ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमद्वाविंशोऽध्याय श्री शुक उवाच। एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवता शिवः भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विप्लवं वचः। श्री बलिर्वाच यद्युत्तमश्लोक भवान् ममेदितम् वचो व्यलीकं सुरवर्ज मन्यते करोमि हितं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरुष्णि मे निजम्। विधे मृगाहं निरयात् पदच्युत न पाशबन्धाद् व्यसना दुरक्तयात् नैवार्थकृच्छाद् भवतो विनिग्रहात्। असाधुवादाद् वृषमुद्विजय जथा पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डम् अर्हतमार्पितम्। यं न माता पिता भ्राता शुद्धश्चादि सन्ति। ठीक है, पढ़िए।
बलिर्वाच यदुत्तमश्लोक भवान् ममेदितम् वचो व्यलीकं सुरवर्ज मन्यते परोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनम् पदं तृतीयं कुरुशीर्षमे निजम्।
विधेमि नाहं निरयात् पदच्युतो न पाशबन्धाद् व्यसनाद् दुरत्ययात् नैवार्थकृच्छ्राद् भवतो विनिग्रहात्। असाधुवादाद् भृशमोद्विजेयत्
पुंसां श्लाघतमं मन्ये दण्डमर्हतमार्पितम्। यं न माता पिता भ्राता पुरोहितश्चादि सन्ति।
श्रीशुक उवाच एवं विप्रप्रोतो राजन् बलि भगवता सुरः विद्यमानोपविद्यात्मा प्रत्याह विप्लवं वशः रचो व्यलीकं सुरवार्य मन्यते अरोम्यरितं तन्न भवेत् प्रलम्बनम् पदं तृतीयं कुरु शिरसि मे निजम्
न पात बंधा व्यसना दुरत्यात् नैवास तृष्णाद् भवतो विग्रहात् असाधुवादाद् धृत द्विजेयथा
पुंसां श्लाघ्यकमं मन्ये दण्डमर्हतमार्पितम् यं न माता पिता भ्राता त्वदश्चादिसन्ति हि श्रीशुक उवाच एवं विप्रकृतो राजो बलिर्भगवतासुरः विद्यमानोऽभिन्न आत्मा प्रत्याहात्मिदं वचः
बलिर्भगवता सुरः
विद्यमानो प्रभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः
बलिरुवाच यद्युत्तम श्लोक भवानमेरितम् वचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते
तो कहां बोल रहे हैं वे श्री सुखदेव गोस्वामी कहां बोल रहे हैं ये गंगा जी के तट पर बोल रहे हैं महाराज परीक्षित की सभा में वहां सभी ऋषि मुनि आए बलि महाराज की भगवान वामन देव की कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी श्री सुखवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार जैसा पहले कहा गया विप्रकृत तिरस्कृत राजन हे महाराज परीक्षित बलि ही राजा बलि भगवता भगवान वामन देव के द्वारा असुर पशु वंश में उत्पन्न बलि महाराज विद्यमान अभी बार बार डांटने पर भी अभिन्न आत्मा उनका चित्त बैलेंस नहीं खोया उनमें क्रोध आदि नहीं आया और भगवान से प्रत्याह बोले अविक्लवम बचा ऐसा वचन जिसमें कोई घबराहट नहीं थी अकंप वचन बोले आज बलि महाराज जी की उक्ति सुनेंगे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने बलि महाराज को सभा में तिरस्कृत किया, गुरु के सामने बहुत बुरी बात सुनाया, ये कह दिया तुम दानी बनते हो, तुम दान नहीं दोगे नरक में गिरोगे। लेकिन बलि महाराज का चित्त सम रहा, वे घबराए नहीं और भगवान को उत्तर दिए, अविकलम बचो, विकलता नहीं थी वाणी में, कोई घबराहट नहीं, क्रोध आ जाए या कुछ कहने लगे कि मैंने दे दिया है और क्या दूँ, तीन पग मांगने आए और ले लिए सारा जगत, कुछ पग भगवान को बोले नहीं उल्टा, बहुत सरल वाणी में बिना घबराहट के बोले, वो वाणी इस प्रकार से बलि रुवाच। बलि महाराज ने कहा यदि उत्तम श्लोक हे उत्तम श्लोक भगवान आप मम ईरितम मेरी वाणी को मम ईरितम बचह मेरे द्वारा कथित वाणी को व्यलीकम असत्य सुरवर्जा हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मन्यते यदि से संबंध है, यदि आप मान रहे हैं कि मेरी बात असत्य है तो मैं करोमि कर रहा हूँ, रितम उसको सत्य कर रहा हूँ, तब न वह नहीं हो सकता है, भवेत हो सकते हैं, प्रलंभनम ठगबाजी नहीं होगी, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, तीन पग भूमि देने के लिए कहा था तो दे रहा हूँ, आप अपने तीसरे पद को पदम चरण कमल को तृतीयम तीसरे गुरु रखिए शिवसली सिर पर ममा में मेरे निजम अपने चरण कमल को। यहाँ प्रश्न होता है कि जब दो पग में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया तो फिर बलि महाराज का सिर तीसरे पैर के लिए कैसे प्राप्त होगा, जो इतना विशाल जगत को नाप लिया और तीसरे पग को केवल एक सिर को नापेगा। लेकिन इसमें बलि महाराज सिद्धांत बोल रहे हैं, सर्वदा यह नीति है कि संपत्ति की जितनी कीमत है होती है उससे दोगुनी दुगना कीमत संपत्ति वाले की होती है, तो आपने मेरा दो पैर में सारी सारा धन ले लिया तो अभी मेरे पास बहुत धन है, दो पग से दुगना है मेरे पास धन। धनी आदमी की कीमत धन से दुगना होती है, तो दो पग तो ले लिया, तीसरे पग के लिए हमारा शरीर ले लीजिए, हमारे सिर पर रख दीजिए। बहुत प्रेम से कहा बलि महाराज, आप हमारा ले लिए लेकिन हमको नहीं लिए, आप हमारे देह को नाप लीजिए, हमारे सिर पर पैर रखिए, अपना चरण कमल रखिए। तो इस तरह से मैं अपनी बात को सत्य करूँगा, या सत्य नहीं हो सकती है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। प्रलंभनम का अर्थ होता है ठगवा जी धोखा देना कह करके ना देना, तो मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा धन है, हमारा शरीर है, मेरी संपत्ति को आपने ले लिया लेकिन मेरे देह को नहीं लिया, तो ये देह संपत्ति से ज़्यादा है। आप बढ़ाइए अपने चरण कमल को, मेरे सिर पर रख दीजिए। कुरु तृतीयम पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, मैं शीर्षणी मेरे सिर पर निजम पदम अपना चरण कमल कुरु रखिए। बलि महाराज के पास श्री भगवान आए थे, वो कपट कर रहे थे, पहले आकर के बात बनाए, बाप दादा का बखान किए कि ये हिरण्यकश्यपु ऐसे था, हिरण्याक्ष ऐसे था, महावीर था, बड़े दानी थे और कोई भी असुर कुल में युद्ध से पीछे नहीं हटा है, दान देने से पीछे नहीं हटा। तो गृहस्थों के धर्म का भगवान ने वर्णन किया, एक कपट का उपदेश किया, वो झूठ बोल रहे थे। कपट की बात बोलना तो झूठ के बराबर ही है। तो बलि महाराज कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोला हूँ, मैं बिल्कुल सत्य बोला हूँ और सत्य करके दिखा दूंगा कि मेरे शरीर को नाप लीजिए, मेरे सिर पर पैर रखिए। और आपने कहा कि तुम नरक में गिरोगे, तो मैं आपसे बता रहा हूँ विधे में ना हम निरया, मैं नरक में गिरने से नहीं डरता, न विधे में पदचित, अपने पद से मैं गिर जाऊँ, मेरा स्वर्ग छीन लिया जाए, सारा जगत छीन लिया जाए, लेकिन इससे मैं डरता नहीं, मैं कंगाल होने से नहीं डरता। न पास बंधा, आपने वरुण पास में मुझे बांध दिया है, इससे मैं नहीं डरता हूँ। मैं व्यसना दुरत्या और कभी समाप्त न होने वाली विपत्ति से मैं नहीं डरता हूँ। बहुत बड़ी विपत्ति पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं डरता हूँ। नैवार्थ कृचा अर्थ संकट से मैं नहीं डरता हूँ। मेरे पास एक पैसा भी ना रहे कोई बात नहीं, मैं अर्थ संकट से नहीं डरता हूँ और आपके दंड से मैं नहीं घबरा रहा हूँ। भवतो विनिग्रह, हमको डर है भय है तो एक ही बात से, असाधुवाद से, हमारा अपजस इस संसार में ना हो। तो मैं अपजस से डरता हूँ, असाधुवाद से। हमारे विषय में यह बात फैले कि बलि एक ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, इस अजस से अपकीर्ति से मैं बहुत डरता हूँ। और किसी वस्तु से मुझे डर, किसी स्थिति में मैं संतुष्ट हूँ। आपने मुझे बांधा है, आप दंड दे रहे हैं, मैं इससे नहीं घबरा रहा हूँ, कोई भय नहीं, बल्कि आपके दंड से मैं प्रशंसनीय बनूंगा। पुंसम श्लाघ्य तमम मन्ये, पुंसम पुरुषों के लिए श्लाघ्य तमम सबसे प्रशंसनीय बात है आपके द्वारा दंडित होना। कोई भी महान पुरुष यदि किसी को दंड देता है तो उस व्यक्ति के लिए, उस पुरुष के लिए भाग्य की बात, प्रशंसा की बात। जैसा आपने दंड दिया वैसा दंड माता नहीं दे सकती है, पिता नहीं दे सकते, भाई नहीं दे सकता, और भी जो सुहृद होते हैं वो नहीं दे पाएंगे। आप जो दंड देते हैं वह अद्भुत दंड होता है। अपने जैसा दंड दिया है या देते हैं वैसा दंड माता पिता भाई सुहृद और भी स्नेही संसार में होते हैं, वे ऐसा दंड नहीं दे सकते। और वास्तविक बात यह है कि त्वं नूनम असुदानानं परोक्ष परमो गुणः, आप ऐसे देवताओं के पक्ष से आए हैं ब्राह्मण का वेश बना करके, लक्ष्मीपति होकर के भी आप भीख मांग रहे हैं। आपका स्वभाव है आप असुरों से अधिक प्रेम करते हैं, देवताओं की अपेक्षा देखने में लगता है कि आप देवता का पक्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हम असुरों के परोक्ष हितैषी हैं, हमेशा हित करते हैं। हितैषी वास्तव में वही है ना जो अनजाने में हित करे। कोई अपने मित्र का हित करता है लेकिन वो जनाता है वो कि मैं आपका हित किया, लेकिन आप ऐसे हितैषी हैं असुरों के राक्षसों के परोक्ष में हित करते हैं। देखने में लगता है कि भगवान असुरों को मार रहे हैं लेकिन वास्तव में आप मारते नहीं हैं, आप उन्हें संसार बंधन से मुक्त करके अपने धाम में भेज देते हैं और कई तरह से दंड देते हैं, कभी धन छीन लेते हैं जैसे आपने मेरे साथ किया है। तो इससे मैं ऐसा नहीं मान लूँगा कि आप हमारे हितैषी नहीं हैं, आप हमारा हित कर रहे हैं। यो अनेक मदांधा नाम विभ्रंसम चक्षुरा दिशा, जब कोई व्यक्ति संसार में अनेक मदों में हो जाता है, अनेक मद जैसे धन मद, जाति का मद, ब्राह्मण में जन्म लेना, उच्च कुल में जन्म लेना, धनी होना, स्वस्थ शरीर का होना और बहुत बड़ा सम्मान मिलना, आदर मिलना, इससे इन मदों से व्यक्ति इस संसार में अंधा हो जाता है। तो मैं भी अंधा हो गया था, तो आपने सभी मदों का अंधापन दूर कर दिया, दूर कर देते हैं उसमें। ये भगवान का स्वभाव है, विशेष करके अपने भक्तों का। जब कोई भक्त धन के कारण, विद्या के कारण अभिमान में हो जाता है तो भगवान उसका धन हर लेते हैं, यह उनका स्वभाव है। बहुत श्रेष्ठ भक्तों का धन हरते हैं, आप घबराइएगा नहीं, साधारण भक्तों का धन हरते नहीं, बहुत श्रेष्ठ भक्तों का धन हरते हैं, जो भक्ति से डिग नहीं सकते। भगवान देखते हैं कि अब धन इसकी कृष्ण भावना में हानिकारक होगा, यह दुर्व्यसन में पड़ जाएगा और वह यदि भक्त पक्का है तो किसी उपाय से समय धीरे धीरे उसका धन हर लेते हैं। धन के कारण वह भक्ति से गिर सकता है, इसीलिए धन हर लेते हैं। यह भगवान की कृपा है, क्योंकि अनेक मदांधा नाम विभ्रंसम चक्षुरा दिशा, जब व्यक्ति अंधा हो जाता है मदों से, धन मद से, विद्या मद से, रूप मद से, तो मद से कोई अंधा हो जाए तो जिस कारण से अंधा हुआ है उस कारण को भगवान हटा देते हैं, आँख ठीक हो जाती, निर्मल हो जाती है, तब वो सही सही मार्ग पकड़ता है। किसी का अपमान नहीं करता, ईश्वर को मानता है, सभी जीवों में भगवान मुझको देखता है। संसार में ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनेता, जो सीधे कहते हैं कि हम तो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। कि क्यों? इसीलिए कि बहुत धन हो गया है, बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई है, तो वे ईश्वर के अस्तित्व को भी चैलेंज करते। एक बार रशिया में मीटिंग हुई थी, बहुत पहले की बात है, उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया कि जो ईश्वर है, भगवान है, उसको बदगद्दी से हटा देना चाहिए। कुछ लोगों ने कह दिया ईश्वर है, अगर है तो उसको किसी उपाय से बैकुंठ से पटक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अपने मन का कर रहा है। पर पटकने वाले सभी मर गए, कोई नहीं रहा, ईश्वर सबको मार दिया है। इतना अभिमान होता है धन का, विद्या का, ये कुछ भी बोलते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं। और ईश्वर के अस्तित्व पर चैलेंज करते हम नहीं मानते हैं ईश्वर, कितने मूर्ख हैं ऐसे बोलते रहते हैं, हम तो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लगता है जैसे बहुत बड़ी डिग्री की बात बोल रहे हैं, लेकिन साधारण लोग न माने तो न माने, इन कुत्तों के कहने से ये बॉम्बे के सभी कुत्ते जुट जाएं और मीटिंग करने लगे कि इस देश का कोई गवर्नर नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भों भों करके सभी भोंकते हैं, इससे क्या दिल्ली का संसद टूट जाएगा? अगर कुत्ते गली गली में भोंकने लगे, माइक ले लें, इस देश में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये झूठा झमेला है, कोई मंत्री नहीं है, यहाँ का कोई सिस्टम नहीं है, एकमात्र समाज है हम कुत्तों का, हमारे अलावा कोई नहीं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हम ही केवल हैं, हम ही केवल रेस्टोरेंट चला रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और कहीं भोजनालय नहीं है, न्यायालय नहीं है, संसद संसद कुछ नहीं है, उन्हीं सब कुछ है। इस प्रकार का अभिमान आ जाए तो यह अभिमान बहुत अंधा कर देता है, खासकर धन का अभिमान सबसे बड़ा बुरा है, धन का अभिमान। इसीलिए भगवान अपने भक्तों का धन हर लेते हैं, उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वे ईश्वर को ठीक से देख सकें, भगवान को समझें। इस विचित्र जगत को बनाने वाला भगवान है ना, और कौन बनाया है? ये तो साधारण बुद्धि से भी आदमी समझ सकता है, जरूर भाई ईश्वर है, सूर्य उग रहा है, सवेरे उगता है, शाम को डूब जाता है, ऋतुएँ बदलती हैं, कभी वर्षा ऋतु आती है, कभी शीत ऋतु आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, और उस ऋतु के अनुसार वृक्षों में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, ये बिना किसी व्यवस्था के कैसे हो सकता है? कोई व्यवस्था जरूर कर रहा है, वही व्यवस्था पर वही जन्मदाता है इस विश्व का, वही पालन करता है और वही संहार करते हैं। ईश्वर में विश्वास करना ये मनुष्य का धर्म है, जो ऐसा नहीं मानता है वह मूर्ख है, वह कुत्ते से भी गया बीता वास्तव में है, जो ईश्वर को नहीं मानता। भगवान है और उनका स्वभाव है, सबसे पहली क्रिया उनकी है सृष्टि। तो बलि महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप हम असुरों के परोक्ष गुरु हैं, हितैषी हैं, परोक्ष में हित करते हैं, छिप करके हित करते हैं। देखने में लगता है कि आप देवताओं के हितैषी हैं, लेकिन देवताओं को आप भोग दे देते हैं और वे अंधे हो जाते हैं, असुरों का धन हर लेते हैं, आप उनको दृष्टि देते हैं। तो अनेक मदांधा नाम विध्वंस, अनेक मदों को खत्म करने वाला चक्षु देते हैं, आँख देते हैं। जस्मिन बैरान बंध ना बूढ़े न दुर्धे तरा बहो ले भीरे सिद्धि जाम है कांत जोगिना। ऐसे इतिहास में बहुत से असुर हुए हैं, बलि महाराज कहते हैं, जिन्होंने आपसे दृढ़ वैर किया, वैरानुबंध, बहुत कड़ा वैर विरोध किया। आप में मन लग जाने के कारण उन्होंने वह सिद्धि प्राप्त की जो बड़े बड़े योगियों को, महात्माओं को भी नहीं मिल पाती। केवल आपसे बैर करने पर वे उस सिद्धि को पा गए, क्योंकि बैर करने पर आप में मन अधिक लगता है, आपके नाम का उच्चारण होता है। जहाँ भी वे मीटिंग करते थे असुर लोग, जैसे हिरण्यकशिपु, एक बार सभा में असुरों के वो संबोधित कर रहा था, सुनो सबका नाम लेकर। विष्णु पहले बहुत सम था, सबको बराबर मानता था, लेकिन अब देवताओं ने उसको अपने पक्ष में कर लिया, दौड़ धूप करके विष्णु को फुसला दिया। अब विष्णु असुरों को मारना चालू किया। सुने हो, मैं सुना हूँ, अब वो सुअर का रूप भी बनाने लगा, सुअर का रूप बना करके हमारे भाई को मारा, तो अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो सूल लिया था हाथ में, बहुत लंबा, तो सूल दिखा दिखा कर कह रहा था, प्रतिज्ञा किया, मैं विष्णु का वध करके ही रहूँगा। इसके बाद रात दिन विष्णु का चिंतन करता था और विष्णु की ही बात बोलता था। तो बहुत बदमाश व्यक्ति है, हमारे भाई को मार दिया, हमारा भाई पृथ्वी लेकर के रसातल में गया था और छिप करके आया, सुअर के रूप में आया, वो मार दिया, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी सभा में मुख्य रूप से हिरण्याक्ष के पुत्र थे, उसके भतीजे और उसकी माँ थी, और हिरण्याक्ष की पत्नी थी। सबको कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, लेकिन मेरा भाई बहुत बहादुरी से मरा है, युद्ध में मरा है, और वो भी विष्णु जैसे वीर से मरा है। तुम चिंता मत करो, उसकी तो गति होगी, लेकिन विष्णु को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा किया, मारना है, और सबसे पहले वो स्वर्ग गुरु गया। वहाँ उसे पता लगा कि इंद्र विष्णु के अधीन रहता है, स्वर्ग का शासन विष्णु के अधीन है, तो वो इंद्र को बंदी बना लिया, विष्णु का भक्त समझ कर। इसके बाद सभी देवताओं को अपने बस में कर लिया। और उसने सोचा कि इस विश्व में ब्रह्मा एक ऐसा देवता है जो सबके ऊपर रहता है, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने तप किया, घोर तप, खड़े खड़े तप कर रहा था। उसके सिर से बहुत बड़ी आग निकली, उस आग से देवताओं का लोक जलने लगा। तो देवता खुद ही ब्रह्मा जी को जाकर कहे, आप उसको वरदान दीजिए, नहीं तो हमारा लोक जल जाएगा। वो लोग पहले भागे, महर लोग गए, देवता लोग महर लोग से ऊपर और आँच पहुँच रहे थे, तो जन लोग चले गए, जन लोग से फिर तप लोग, अंत में सत्य लोग में पहुँच कर ब्रह्मा जी से विनय किए। तो ब्रह्मा जी अपने वाहन पर, हंस पर चल करके आए हिरण्यकश्यपु को वर देने के लिए। तो जब आए देखे तो वहाँ हिरण्यकश्यपु का कुछ पता नहीं था, उसके शरीर पर दीमक देवकार बना लिए थे, बल्मिक जम गए थे, और मिट्टी जमने के बाद फिर घास जम गए थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ भी हो गए थे तप करते करते। तो ब्रह्मा जी देखे कि यहाँ हिरण्यकश्यपु है, समझ गए, तो गंगा जी के पानी को उसके शरीर पर छिड़के तो सारे बाल्मीक ढह गए, वो प्रकट हुआ सोने के समान दिव्य शरीर में। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसा तप किसी ने नहीं किया, तुम्हारी क्या इच्छा है वर मांगो? तो असुर था, भगवान से वैर था, उसने वर मांगा, आप हमको यह वर दीजिए कि मैं किसी भी देवता से, किसी भी व्यक्ति से कभी हारूं नहीं और किसी भी अस्त्र से मैं मरूं नहीं। उसको भय था सुदर्शन चक्र से और वज्र से, तो उसने मांगा कि हमारी वज्र से मृत्यु न हो, सुदर्शन चक्र से हमारी मृत्यु न हो। जब ब्रह्मा जी चलने के लिए तैयार हुए, ठीक कह करके कहता, सुनिए अभी हम और चीज नोट किए हैं, लिखे हैं, अभी लिस्ट बहुत ज़्यादा है मांगने का। तो ब्रह्मा जी रुक गए, उसने कहा, मैं धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, ऊपर न मरूं। तो जानता था कि कभी कभी लोग मर जाते हैं विमान दुर्घटना में, और जमीन पर तो मरते ही हैं, तो माना कि मैं जमीन पर न मरूं और आकाश में न मरूं, ठीक है, और सुनिए मैं रात में न मरूं और दिन में न मरूं, मैं घर के बाहर न मरूं और घर के भीतर न मरूं, मैं किसी आदमी से न मरूं, आदमी भी बहुत खतरनाक है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं मनुष्य से न मरूं और किसी पशु से न मरूं, गीली वस्तु से न मरूं, कठोर वस्तु से न मरूं, मतलब विष से न मरूं। ये वरदान दीजिए कि मैं मरूं ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो नियम है, सबको मरना पड़ता है, मैं भी अमर नहीं हूँ। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, ठीक है, आप मुझे अमर होने का वर नहीं दे सकते हैं, तो ये सब वर दीजिए, मैं ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, किसी पशु से ना मरूं, किसी मनुष्य से ना मरूं, रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, घर के भीतर ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा असुर पा गया वरदान ब्रह्मा जी का, और उस सारे जगत को तबाह करने लगा। देवताओं का लोक जीत लिया और वो कहता था कि ये दो देवता तो हमारी पूजा के बस में है, शंकर जी और ब्रह्मा जी, और विष्णु मिलता नहीं है, उसको खोजते खोजते हार गया। वैकुंठ भी गया था, भगवान को खोज रहा था, लेकिन भगवान ने देखा कि ये तो बाहर देखता है, वे तुरंत सूक्ष्म रूप से उसके हृदय में प्रवेश करे, तो कहीं भगवान नहीं मिला। तो अंत में उस ये निर्णय किया कि तो लगता है हमारे भय से विष्णु का हार्ट अटैक हो गया, तो अब क्या बैर करना है। फिर बैर छोड़ दिया और आ गया अपनी राजधानी में, लेकिन इस राजधानी में घटना खास अपने घर का अपना लड़का वो विष्णु का महान भक्त निकल गया, उसको बहुत चिंता हुई, तो बहुत तरह से मारने का प्रयास किया, शूल से पर्वत पर से गिरा करके, हाथी से कुचला करके, आग में जला करके, पर कभी कहीं भी प्रहलाद को मार नहीं सका। किसी भी वस्तु में भगवान है, भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं। जब अंत में नहीं मरे प्रहलाद जी, तब वह विद्यालय में भेज दिए गुरुओं के कहने से, इसको गुरुकुल में भेज दीजिए और शुक्राचार्य जी आएंगे तो नीति सिखाएंगे इसको, अभी तो बच्चा है, अभी क्या इसमें गुण दोष है। हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी बहुत बड़े नीति के जानकार हैं, तो आएंगे इसको नीति पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा, इसका विवाह होगा, तो ये छोड़ देगा विष्णु की भक्ति। लेकिन प्रहलाद जी स्कूल में गए, वहाँ पर कभी कभी छुट्टी होती ही थी, छुट्टी होने पर बच्चों को बुलाए प्रेम से और कहे यह जीवन नश्वर है, शरीर बदलना पड़ेगा, इस शरीर से चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। सभी बच्चों ने मान लिया, क्योंकि प्रहलाद जी की शिक्षा बड़ी उत्तम थी और गुरु के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट को बिल्कुल निग्लेक्ट किए, तो गुरु ने लाए पकड़ करके प्रहलाद महाराज के पिता के सामने, उन्हें पूछा अब तक तुमने जो पढ़ाई किया है तो सबसे श्रेष्ठ शिक्षा क्या है। प्रहलाद ने सहज तरह से उत्तर दिया बिना भय के, पिताजी भगवान विष्णु का श्रवण करना, कीर्तन करना, चरण सेवा करना और नवधा भक्ति बता दिया, यही सबसे श्रेष्ठ है। उसको इतना क्रोध हुआ, तुरंत अपने हाथ से मारना चाहिए प्रहलाद को, लेकिन भगवान प्रकट होकर के हृदय कस्बों को ही मार दिए। हिरण्यकश्यपु बाद में रावण बना और अंतिम जन्म में वह शिशुपाल बना। शिशुपाल जब भगवान की अग्र पूजा हो रही थी, सारी सभा में युधिष्ठिर महाराज जग किए थे, राजसूय जग, वहाँ प्रस्ताव रखा गया सबसे अग्र पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी की जाए यज्ञ में। तो सहदेव जी ने उठ करके बताया कि भगवान कृष्ण की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, अगर इनकी पूजा होती है तो सारे विश्व की पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से वृक्ष के शाखा पर शाखा फल फूल सब जगह पानी पहुंच जाता है, ऐसे ही कृष्ण की पूजा करने से सबको तुष्टि होगी। तो बहुत भव्य तरीके से युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी रानी के साथ भगवान की पूजा की। पूजा चल रही थी तब तक शिशुपाल खड़ा हो गया और लगा गाली देने, कि युधिष्ठिर सबको बेवकूफ बना रहा है, इतने लोगों को बुला करके और एक ग्वाले की पूजा करा रहा है, यहाँ इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हैं, राजर्षि बैठे हैं, ब्रह्मर्षि जैसे वशिष्ठ जी हैं, नारद जी हैं, भृगु हैं, सबके बीच में एक चरवाहे की पूजा हो रही है, क्या कहा जाए, काल बहुत भगवान है। ये सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है, सभी युधिष्ठिर की बात मान रहे हैं, युधिष्ठिर पूजा कर रहा है कि कृष्ण के गुणों से मैं कृष्ण से इसका इसको प्रेम है इसीलिए पूजा कर रहा है, कृष्ण की विशेषता से मैं अभी मैं इसको मार दूंगा। वो धनुष उठा लिया, गदा उठा लिया, भगवान से लड़ने के लिए मारने के लिए वहीं पूजा हो रही है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में जो थे भीम अर्जुन और भी राजा लोग उससे बड़े बंद हुए और लड़ने के लिए तैयार हो गए यज्ञ में। भगवान ने देखा कि यज्ञ में गड़बड़ी हो जाएगी, उन्होंने सबको रोका, अपने पक्ष के लोगों को, आप लोग बैठिए चुपचाप शांत रहिए। बड़ी शांति से वे अपने चक्र को चला करके उसका गर्दन काट दी, शिशुपाल का वध कर दिया। वध होते ही सब लोगों ने देखा सभा में कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति प्रकाश सीधे भगवान के चरणों में प्रवेश कर गई। वो सूचित कर रहा था कि इसको भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ गति है और शिशुपाल को मिली। बलि महाराज कहते हैं ऐसे अनेक असुर हुए जिन्होंने आपसे बैर किया, बैरा न बंद, बहुत कठिन बैर, बैर अनुबंध, अनुबंध कहते हैं बैर की गांठ, और वह गति प्राप्त किए जो बड़े योगियों को भी नहीं मिलती। जस्मिन बैरानुबंध है ना रूढ़ न विरुधे तरह बहोले विधे सिद्धि में जाऊँ है कांत जोगना। बहो बहुत से असुर इस परम सिद्धि को प्राप्त किए बैर करने से। जिनसे बैर करने पर भी यह लाभ होता है, इनका धाम मिलता है, उन्हीं प्रभु के द्वारा मैं बांधा गया। आपके कर्म अद्भुत हैं प्रभु, मैं आपके द्वारा बांधा गया हूँ, इसके लिए मुझे कोई लज्जा नहीं है और मेरे मन में कोई दुख नहीं है कि क्यों बांधा गया। सबसे बड़े हितकारी के द्वारा मैं बांधा गया हूँ। आप जो हमको बोले तुम दम्भी हो, दान देने का वचन दे करके पूरा नहीं किया, इन सब बातों से मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप मुझे बांधे हैं वरुण पास से, इसके लिए मुझे कोई लज्जा नहीं है और ना व्यथा है, तो मन में कोई घबराहट नहीं है, लज्जा नहीं है। फिर बड़े महाराज कहते हैं, पिता महो में भवदीय सम्मत प्रहलाद आविष्कृत साधुराद। मेरे बाबा मेरे पितामह प्रहलाद महाराज भवदीय सम्मत आपके भक्तों के द्वारा बहुत प्रशंसित हैं, सब उनका आदर करते हैं। भक्तों में प्रहलाद महाराज एक कसौटी के समान है, तो हमारे बाबा आपके भक्तों के सम्मत हैं, भवदीय सम्मत हैं, आपके सभी भक्त उनको मानते हैं। और हमारे पितामह प्रहलाद महाराज आपके भक्त थे, इस कारण से भवत विपक्षेण आपके विपक्ष में रहने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा बहुत कष्ट में पहुँचाएंगे। प्रहलाद महाराज का एक ही दोष था कि वे आपकी शरण में थे, वे आपको मानते थे, इसी कारण से उनका पिता हिरण्यकश्यप उनसे रुष्ट था और उनको मारना चाहता था। और मारने के लिए उसने क्या क्या दुख नहीं दिया प्रहलाद महाराज, बहुत प्रकार के कष्ट दिया, लेकिन फिर भी भगवान आपके चरण कमल को ही प्रहलाद महाराज पकड़े रहे, कभी नहीं छोड़े। कितना कष्ट हुआ, भीषण आग में जलाया गया, हाथी से कुचलाया गया, विष भरे कंदरा में डाला गया, विष था, बड़े भयंकर सांपों से डसवाया गया, बहुत कष्ट दिया गया, लेकिन वे आपका ध्यान एक पल के लिए भी छोड़े नहीं। कितना दुख हुआ, लेकिन फिर भी आपका नाम जपते रहे, आपको प्रणाम करते रहे, वे आपका चरण कमल छोड़े नहीं। तो हमारे लिए आदर्श हैं प्रहलाद महाराज। इतना कष्ट होने पर भी प्रहलाद भगवान का चरण कमल छोड़े नहीं, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं तो प्रहलाद महाराज का सिखाया हुआ हूँ। प्रहलाद महाराज का क्या विचार था, वो कहते हैं कि मात मनाने न जहाती अंकता कि मृक्ष हार स्वजना के दस दिन किम जाए या संस्कृति हेतु भूतया मर्त्य गे है कि निहाई सो गया। प्रहलाद महाराज ने सोचा कि आत्मा ने न जहात यंत्र पर, इस शरीर से आत्मा से क्या फायदा है, क्या लाभ है, अंत में यह छोड़ ही देता है, शरीर एक दिन गिर जाएगा निश्चित है। अंततः मतलब अंत काल में मृत्यु के समय यह शरीर आत्मा का साथ छोड़ देता है। ये छूट जाता है, लेकिन प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं जहात यम तत्व, यह देह ही छोड़ देता है आत्मा को, आत्मा नहीं चाहता है छोड़ना, लेकिन देह असमर्थ हो जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, कितना भी बीमार हो, मरने की स्थिति होते फिर भी शरीर प्रिय लगता है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ना नहीं चाहता लेकिन शरीर ही उसको छोड़ देता है। देह परिवर्तन निश्चित है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं रोज गंदे कपड़े को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार से शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, नया शरीर मिलेगा, और कैसा शरीर मिलेगा ये कोई नहीं जानता। परिवर्तन होगा शरीर का, और इस शरीर के बाद कैसा शरीर मिलेगा, किस योनि में, पशु में या पक्षी में, मच्छर में, घास में, कुछ पता नहीं। ये दोनों बात भगवान गीता में कहते हैं, ध्रुव है, निश्चित है, शरीर छोड़ना और शरीर ग्रहण करना। तो इस शरीर की ममता में क्यों फंसे, क्या लाभ है, किमात मनाने में जहात अंततः, इस शरीर से क्या लाभ है जो अंत में छोड़ देता है। आत्मा नित्य है, लेकिन नित्य आत्मा को यह अनित्य शरीर कुछ दिन के लिए मिलता है, छूट जाता है, कुछ वर्ष के लिए, कुछ दिन के लिए यह शरीर मिला है और ये छूट जाएगा। इस ज्ञान में हम लोगों को हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहला विचार है कि आत्मा से यह देह पृथक है, इसी को संवारने में, इसी को भोजन देने में और इसी में तेल लगाने में या और कार्यों में अपने समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जब तक शरीर है किसी खास काम के लिए है तो काम पूरा कर लेना चाहिए। काम क्या है, इस शरीर से कृष्ण भावना में प्रगति करना, भक्ति करना। भगवान ने एक छोटे समय में ये अवसर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आयु होगी मनुष्य की, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। अगर कोई बहुत अच्छी जिंदगी जिए तो 100 वर्ष, बहुत कम समय है। आत्मा तो अनादि काल से है, बहुत काल तक रहेगा, इसकी मृत्यु नहीं है। न जायते मृते वा कदाचि नयम भूत्वा भवता वा न भवति, आत्मा अमर है, अजर है, लेकिन यह शरीर मरते है, क्षणभंगुर है, प्रतिदिन मृत्यु हो रही है शरीर की, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के सेल्स मर जाते हैं और नए बनते रहते हैं। ये बताते हैं कि 3.5 साल में शरीर पूरा मर जाता है, ऐसे सेल्स नए बनते हैं तो उन्हीं को मिला करके एक दूसरा शरीर बनता रहता है। जैसे दीपक का लौ होता है, दीपक की ज्वाला जलती है तो ऐसा लगता है कि वो अखंड है, लेकिन दीपक की जो शिखा होती है वो अंत में ख़त्म होती जाती है, और दीपक की बत्ती से, तेल के संयोग से ज्वाला जलती रहती है। तो हर एक क्षण नई ज्वाला आती है, लेकिन ये पता नहीं लगता है कि ये मर गया दीपक, वो अखंड है, दिखाई पड़ता है। जैसे शरीर के कण परमाणु बनते रहते हैं और मिटते भी रहते हैं, मिटते हैं शौच से, पेशाब से, पसीना से, तब जाते हैं और बनते भी रहते हैं। तो 3.5 साल में एक शरीर पूरा मर जाता है, दूसरा मिलता है। तो हम लोग जीवित हैं लेकिन जीवित अवस्था में ही शरीर तो मर जाता है, प्रतिक्षण मर रहा है, प्रतिक्षण परमाणु बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। ये भ्रम बस व्यक्ति अपने को मान लेता है कि मैं ये देह हूँ, और वो ये जानता है कि मैं मरूंगा नहीं, इसलिए उसकी धारणा होती है कि आत्मा मरने वाला नहीं है। पर आत्मा को समझना चाहिए, तो देह को ही आत्मा मान लेता है तो वो कभी भी अमर नहीं हो सकता, मरना तो है ही शरीर को। जहाति अंततः, यह अंततः जहाति छोड़ देता है। इस शरीर की ममता में पड़ करके अपना समय नहीं खोना चाहिए, ये कुछ ही समय के लिए मिला है और इसके लिए बहुत बेचैन नहीं होना चाहिए कि शरीर को बचा लें, खा लें, पी लें, पहन लें, घर मकान बना लें। केवल इसमें समय बर्बाद नहीं करना है, कुछ भी हम करें, कुछ भी प्रयास करें, कितना कष्ट सहें, लेकिन ये शरीर निश्चित छूटेगा। ये सब देखी हुई बातें हैं किसी डॉक्टर से, औषधि से, हॉस्पिटल से इस शरीर को बचाया नहीं जा सकता। यह तुरंत में जाएगा ही, लेकिन जब तक है तब तक इससे काम निकालना है। सबसे बड़ा काम है इसी शरीर से जप करना है, महामंत्र का उच्चारण करना है, भागवत पढ़ना है, गीता पढ़नी है, सत्संग करना है। तो अपने शरीर का मूल्य इसी में है। अगर हम भगवान की भक्ति कर लिए इसके द्वारा, तब शरीर रहे या जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर काम नहीं किए, अपना भक्ति नहीं किए, तो बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि है। भगवान ने शरीर दिया है लेकिन वो छीन भी लेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चिंता करनी चाहिए कि शरीर जब तक है और शरीर जब तक जवान है तब तक भक्ति करें, बुढ़ापा में कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कहीं कोई रोग हो गया तो रोग भी शरीर को अक्षम कर देगा। भगवान का जप भी नहीं कर पाएंगे, उनको इसका अनुभव है। जब उनको पंजाब में, कौन शहर है, जालंधर, वहाँ जब पैरालिसिस हुआ तो मैं भगवान के मंदिर में था, खड़ा था, लेकिन पैर में थोड़ी सी झिनझिनी जैसी हुई और इसके बाद बस 1 मिनट में ही मैं खड़ा नहीं रह सका। अपने एक शिष्य से, भक्त से, मैं कहा कि मेरे मुझको पकड़ो, तो पकड़े। इसके बाद मैं गाड़ी पर चढ़ करके आया रूम में जहाँ रुका था। वहाँ आने के बाद मैं प्रसाद खाया और प्रसाद खा करके ज्यों मुंह धोने के लिए बाथरूम में जा रहा था, तब तक गिर पड़ा, मैं कर्टन पकड़ा, पर्दा पकड़ा घर का, लेकिन पर्दा भी गिर पड़ा। उसके बाद मुझे ध्यान है कि मेरे मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, बोलने की शक्ति ही नहीं थी। प्रयास करने के बाद भी आवाज़ निकल नहीं पाता था। स्मरण था, मन में जप होता था, लेकिन वाणी से बोल नहीं सकता। दिल्ली आया, वहाँ 10 दिन ACO में था, फिर भी बोली नहीं निकलती। इसके बाद वृंदावन आया, वृंदावन से फिर बॉम्बे आया कुछ भक्त की प्रार्थना पर, तो मुझे कथा कहनी थी। कथा के समय मुँह टेढ़ हो जाता था, कोई कथा नहीं निकलती थी, लेकिन भगवान की कृपा से आवाज़ महामंत्र निकलने लगा। तब धीरे धीरे विश्वास हो गया कि ठीक हो गया। और मैं पुतना बध की कथा कहा कि मीरा रोड में, तो बहुत लोग कहे कि हाँ ठीक है, आवाज़ ठीक हो रही है। तब कुछ साहस मिला, मैं विश्वास किया कि भगवान ठीक कर देंगे। और भगवत कृपा से मैं ये कथा कह लेता हूँ, महामंत्र जप लेता हूँ, ये शक्ति कुछ है। लेकिन ये शक्ति कभी भी जा सकती है किसी की, अभी कभी भी कुछ हो सकता है। ये शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। किमात मनाने न जहात अंततः, जो शरीर अंततः छोड़ देगा आत्मा को, इससे क्या लाभ है। किम रिक्त हा रही स्वजना की दशा। और जो अपने स्वजन हैं, घर के लोग, वो तो केवल डाकू हैं, स्वजन नाम है किसी का, तो लेकिन सब रिक्त हार हैं। रिक्त माने धन, धन लेने के लिए जन्म लिया है। परिवार में सभी लुटेरे जैसे होते हैं, सबके परिवार में बात है, तो लुटेरे जैसे हैं, अंत में लुट ही लेते हैं। खास करके बेटा, बेटा लुटने के लिए ही जन्म लेता है। अगर कोई बाप मर जाए तो देखता है, देखा जाता है कि इसका कोई उत्तराधिकारी है कि नहीं, तो सरकार भी बेटे को दे देती है धन। तो लूट लिया कि नहीं, ये लूटना ही है ना। जो धन बहुत परिश्रम करके व्यक्ति कमाया, कोई तो व्यापार करके या डॉक्टरी करके या किसी भी तरह से प्रोफेसर बन करके, मास्टर बन करके, पढ़ाई लिखाई करके धन कमाया, बहुत परिश्रम और बहुत सावधानी से रखता है पैसे को, पर उसके स्वजन, भाई, लड़के सब लगे रहते हैं कि इसका धन कम लेंगे। और उस अस्पताल जाता है उस समय अथवा उसकी मृत्यु के समय सारा धन ले लेते हैं, जीवित अवस्था में ले लेते हैं। तो ऐसे डाकुओं से क्या लाभ, आदमी उन्हीं की ममता में पड़े रहता है। ये हमारा परिवार है, ये हमारे स्वजन है, लेकिन स्वजन वो केवल धन लूटने के लिए है। ये प्रहलाद महाराज का विचार है, स्वजना के दस्यु, स्वजन नामक दस्यु है। वो हैं डाकू, मान लीजिए डाकू किसी घर में आवे और किसी के टोपी पर लिखा हो पुत्र, भाई,
ऐसा तो डाकू ही रहेंगे, तो इनका नाम है परिवार में जो जन्म लिए, पुत्र नाम है, भाई नाम है, लेकिन है डाकू, दस्यु हैं। इन दस्युओं के फेरे में पढ़ करके व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है, परिवार की ममता में पढ़ करके जप नहीं करता है, भगवान को प्रणाम नहीं करता, बल्कि कभी कभी तो ये भी देखा जाता है व्यक्ति दूसरों को सिखा सकता है लेकिन अपने परिवार के डाकुओं को कुछ नहीं बोल सकता है। ये लड़के स्कूल जा सकते हैं लेकिन महामंत्र का जप नहीं कर सकते, ये बात सत्य है ना। और जो कठिन परिश्रम से कमाई की गई है, कमाई का पैसा ले ही लेते हैं, ये धन कमाया है व्यक्ति चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, इसका सबसे सच्चा उपयोग है कृष्ण भक्ति में लगाना, भक्ति के विकास में लगाना, वृंदावन की यात्रा करना, भगवान की भक्ति जिससे हो वो काम करना। पैसे को व्यर्थ खर्च कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी हानि होती है, उसी के कारण व्यक्ति नरक में चल जाता है। धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, उचित काम में लगाना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में भक्ति बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम सुनना, वृंदावन जाना, भगवान के धाम की यात्रा करना, मंदिर की यात्रा करना, तो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ जाने पर भगवान का दर्शन होता है, प्रणाम करते हैं, और भक्तों के द्वारा जो कथाएं होती हैं उसको सुनना चाहिए बड़े ध्यान से। अगर धन इसमें लगता है, धन तो सब जगह लगता ही है, यहाँ से अगर जुहू जाना है तो धन नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे, टेम्पू को या टैक्सी को देना ही पड़ता है, बस वाले को देना पड़ता है। तो धन का ये उपयोग है, भगवान के मंदिर में जाने के लिए बस पकड़ना या टेम्पू पकड़ना, टैक्सी पकड़ना, ये धन का उपयोग है। और गीता खरीद करके प्रतिदिन पढ़ना, भगवान की बात को पढ़ना, ध्यान देकर श्रील प्रभुपाद की व्याख्या, धन का ये उपयोग है सच्चा। ये भक्ति में वृद्धि करें काम, शरीर मिला है ऐसे तो इस संसार में कितने मनुष्य हैं, हमको पता नहीं कितने अरब हैं, भारतवर्ष में केवल 125 करोड़ हैं, 125 कोटि मनुष्य हैं। इन मनुष्यों में अधिकांश ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ये शरीर हमको मिला है भगवान की भक्ति के लिए, कुछ पता नहीं है, जैसे पशुओं को पता नहीं हमको क्यों जन्म मिला है, वे केवल बस खाते हैं, सोते हैं, कोई काम करते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को कोई पता नहीं है क्यों हमको ये देह मिला है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें क्या करना चाहिए, इसका कोई पता नहीं। किसी किसी को पता है कि हमको मानव देह प्राप्त है, इसमें विशिष्ट चेतना है, हमको भगवान को समझना चाहिए। बहुत कम लोगों को ज्ञान है, तो वे उपाय करते हैं भगवान को जानने का और दुख मिटाने का उपाय करते हैं। उपाय बहुत से हैं, ज्ञान प्राप्ति के उपाय में लगते हैं। तो मनुष्यों में बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं जो भगवद गीता से सहायता लेते हैं, भगवान से सहायता लेते हैं। भगवान तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए, वे बारंबार अवतार लेते हैं और अपना उपदेश भगवद गीता इसी जगत में छोड़ करके गए हैं। उन्होंने कोई लिखा नहीं है कि ऑल राइट रिजर्व, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी छाप सकता है। तो इतनी सुविधा भगवान ने दिया, और सबसे अंत में वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और स्पष्ट कहे कि भगवान का नाम जपो, यही सबसे श्रेष्ठ साधन है। हरे नामा हरे नामा हरे नामा यो केवल कला नाश्ते व नाश्ते व नाश्ते व भक्ति रन्य था गति रन्य। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम गति है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस तरह से भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमें इस अवसर से अवश्य लाभ ले लेना चाहिए, अन्यथा पछताने के अलावा और कोई गति नहीं। शरीर नाशवान है और परिवार का संबंध भी नाशवान है, जाति देश सब नाशवान है। एक दिन देह छूटेगा, परिवार छूट जाएगा, जाति छूट जाएगी, देश भी छूट जाएगा, गांव छूट जाएगा, और इसके बाद कैसा देश मिलेगा कोई पता नहीं, कहाँ जन्म मिलेगा, किस जाति में, मच्छर में कि मनुष्य में, कुछ पता नहीं। जो गति के विषय में अनिश्चिंतता है, परंतु निश्चित केवल एक चीज है, डेथ इज श्योर, मरना निश्चित है, और कुछ भी निश्चित नहीं है। तो मृत्यु से डरना चाहिए, और मृत्यु से भी अधिक डरना चाहिए समाज से, सामान्य लोगों से। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं समाज से डरना चाहिए। समाज के लोग तो ज़्यादातर बहिर्मुख हैं, भोगों में पड़े हैं, स्पर्धा है, कंपटीशन है, केवल भोगों को इकट्ठा करने और भोगने की। इत्थं सन्निश्चित पितामहो महान अगाध बोध भवतः पार करना। इस प्रकार से निश्चय करके प्रहलाद महाराज, जिनका ज्ञान अगाध है, आपके चरण कमलों को पकड़े रहे, और आपका चरण कमल अकुतो भयम है, भगवान के चरण कमल में रहने से कोई भय नहीं और सर्वत्र भय है। जनार भीतर वो जनों से असुर कुल से दूर रहते थे, खास उनका परिवार असुर था, इसलिए उससे प्रेम नहीं करते थे। इसी कारण से उनके पिताजी को भगवान ने मार दिया। बलि महाराज कहते हैं कि इसी अथा हम आत्मविपोस्तवांतिकम अंतकांतिक। बड़े भाग्य की बात है कि मैं आपके चरणों के पास आ गया। आप हमारे यहाँ ब्राह्मण बन करके आए, ये हमारा भाग्य है। मैं तो धन में आसक्त था, लेकिन आपने बलात् मेरा धन छीन लिया, और बलात् अपने चरणों में ले लिया। ये अंतक के विषय में कह रहे हैं कि जो अंतक है, मृत्यु अंत कर देने वाला, ये सदा आयु के साथ लगा हुआ है। ये हम लोगों की आयु जो है वो मृत्यु के बिल्कुल निकट है। कब मृत्यु होगी कोई पता नहीं। व्यक्ति इस बात को भूल जाता है, भोगों में पड़ जाता है। तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, भाग्य से मैं आपके पास आ गई। इस प्रकार से बलि महाराज जब बोल रहे थे, उसी समय प्रह्लाद महाराज वहाँ प्रकट हुए। प्रथम भाषमाण से प्रह्लाद भगवत प्रिय अत्र जगाम कुरुश्रेष्ठ राका पति दिवस्थ हे कुरुकुल श्रेष्ठ परीक्षित। जब बलि महाराज इस प्रकार से बोल रहे थे, उसी समय प्रह्लाद महाराज यहाँ आए। वैसे चमक रहे थे जैसे वाकापति चंद्रमा के समान चमक रहे, उदित हुए। तो बलि महाराज अपने पितामह को देखे, विराजमान बहुत सुंदर लग रहे थे। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी और शरीर अंजन के समान चमक रहा था, काला अंजन के समान। बहुत लंबा शरीर था उनका, प्रांशु पीताम्बर पहने थे, संगमर लंब बाह, उनकी बाहें बड़ी बड़ी थी, सुभगम बहुत ही सुंदर थे, सभी लोगों को बहुत प्रिय लगते थे। बलि महाराज अपने पितामह प्रह्लाद महाराज की पूजा करना चाहते। जब भेंट होती थी तो बहुत बढ़िया से पूजा करते थे, लेकिन इस समय बलि महाराज बंधे हुए हैं, हाथ बंधा हुआ है, तो वे प्रह्लाद महाराज को सिर झुका करके केवल प्रणाम किए, कोई पूजा आदि नहीं कर पाए पहले की तरह, इसलिए कि बंधे थे, वरुण पास में बंधा गया था, तो नमस्कार भी केवल सिर से किए, सिर झुका करके। उनको लज्जा आ रही थी कि हमारे गुरु महाराज पितामह प्रह्लाद महाराज हमको जान गए कि ये दोषी है। और बलि महाराज अपने में अपराध की भावना कर रहे थे, मैं अपराधी हूँ, मैंने भगवान का अपराध किया। और श्री प्रहलाद महाराज भी सूत्रों समझ गया कि अपराधी है, अपराधी है तभी तो भगवान बांधे हैं। प्रहलाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने देखा भगवान बैठे हैं वामन देव, और बहुत निकट में उनके पार्षद सुनंद आदि बैठे हैं। इसको देख करके प्रहलाद जी की आंखों में आंसू भर गया, आनंद के आंसू, और शरीर में पुलक हो गया, गदगद वाणी से कहने लगे, तो यही व दत्तम पदमंद मुद्रता हितम तदेवादत्त तय शोभन, आपने ही बलि को इंद्र पद दिया था, स्वर्ग दिया था, और आज है हर लिए उसको, तो तथा व शोभन, जैसे देना आपका सुंदर था वैसे ही ले लेना सुंदर है। क्योंकि ये धन आत्मा की अभिव्यक्ति कर देता है, आत्मा को मोह में डाल देता है। धन के अभिमान में व्यक्ति भोगों में फंस जाता है, भोगों का ऐसा स्वभाव है कि फिर आत्मा का अनुसंधान भूल जाता है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, हे नारायण, हे सभी जीवों के कर्मों के साक्षी, आपको प्रणाम है। आप सबके कर्मों को देखते हैं, भगवान से कह रहे थे, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, अनुमोदन कर रहे थे कि आपने जो इसको दंड दिया, इसका धन छीन लिया, बहुत अच्छा। उसी समय ब्रह्मा जी कुछ बोलना चाहते थे, ब्रह्मा जी बोलने के लिए तैयार हुए, और तब तक माई के पास विंध्यावनी पहुंच गई। देखिए ध्यान देने की बात है, ब्रह्मा जी विश्व के गुरु हैं, भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं, वे बोलना चाहते थे, उसके पहले स्त्री आकर के बोलने लगी, बलि महाराज जी की पत्नी, वो बेचारी घबराई थी, भयभीत थी, उसके मन में दुख था कि उसके पति को बांधा गया है। और जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपने अच्छा किया, इस पर कृपा किया है, तो वो बेचारे घबरा गए, पति को छुड़ाने के लिए ही वो बोलने लगे। और उसने इस प्रकार से बोलना चालू किया, विंध्यावली द्वार, हे प्रभु, आप क्रीड़ा के लिए इस विश्व का निर्माण किए, आपने इस विश्व का निर्माण किया, इस संसार में सब जगह आपने विपुल भोग बनाया, संसार का निर्माण किया और सबका पालन करते हैं, पालन करने के लिए विविध वस्तु बनाए, लेकिन इस संसार में लोग इतने मूर्ख हैं, खास करके अपने पति को कह रहे हैं, इतने मूर्ख हैं कि आपके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को अपना है, अपना मान लेते हैं, ये नहीं विचार करते हैं भगवान का दिया हुआ है, लज्जा भी नहीं आती है ये कहने में कि हम खास करके बलि महाराज ने एक कह दिया कि मैं अपना वचन पूरा करूंगा, शरीर मेरा है, शरीर को दे करके मेरे सिर पर तीसरा पैर रखें। तो बिंध्यावली इसकी आलोचना कर रही है कि ये लज्जा नहीं आती है इनको कहने में, क्या इनका है, कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन इस संसार में लोग मान लेते हैं कि यह वस्तु मेरी है, इतना भूमि हमारा है, यह तुम्हारा है, और किसी का नहीं, न हमारा है न तुम्हारा है, सब कुछ भगवान का है। तो ये देह है बलि महाराज का हो चाहे किसी का, ये तो देह भी भगवान का दिया हुआ है। तो ये कहने में लज्जा नहीं आ रही है कि मैं देह अर्पित करूँगा। अरे क्या अर्पित करोगे, सब कुछ तो कृष्ण का है, भगवान का है, तो भगवान की वस्तु भगवान को देना है ना। ये कहकर के कि मेरा धन है, मैंने दे दिया, दो पर तीसरा भी सत्य करूँगा, ये कहने में लज्जा भी नहीं आती। किसी भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि संसार में जो कुछ है सब कुछ भगवान का है, शरीर भी, शरीर तो हम नहीं बनाए हैं ना, शरीर भगवान बनाए हैं। तो ये कहना कि मैं शरीर दे करके अपने वचन को सत्य करूंगा, ये झूठी बात है, कुछ भी अपना नहीं है, स्पष्ट आलोचना करती है कि इस प्रकार की बात बोलने वाले मूर्ख हैं और निर्लज्ज हैं, लज्जा नहीं आती। एक प्रकार से तो प्रहलाद महाराज को तो सुना रही है बहुत सुंदर बात बोल रही है मौके पर, इसीलिए ब्रह्मा जी से आगे बोलने लगे। ब्रह्मा जी अभी चुप हैं, ये भी ध्यान से सुनना है, बहुत ऊंची बात बोली कि अपना कुछ भी नहीं है, सबके निर्माता भगवान है, सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के, शरीर या धन कुछ भी सब कृष्ण का है। तो ये कहना कितनी लज्जा की बात है कि मैं अपना देह दे दूंगा, आप अपने चरण को मेरे सिर पर रखें, मेरे सिर पर, सिर शरीर में सिर किसका है, सब भगवान का है, शरीर का सारा अंग भगवान का है, घर भगवान का, धन भगवान का। इस प्रकार की बात बोलना कि मैं धन दे दिया, जो बाकी एक पल है मैं दे रहा हूँ, या ये बात सोचना कि यह आज ये मेरा धन है, आज मैं इतना कमाया, आगे कल और कमाऊंगा। गीता में भगवान कहते हैं ये अशुद्ध विचार है, अशुद्ध विचार है, इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथ हूँ, आज मैं इतना प्राप्त किया, कल और प्राप्त करूंगा, मैं और धन की वृद्धि करूंगा, मेरे समान कौन है, मैं बलवान हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार की बात सोचना है असुर का विचार, भगवान ने कहा है गीता में। तो ये कह दिया बलि महाराज ने कि मैं देह दूंगा, क्योंकि देह मेरी संपत्ति है, और संपत्ति का मालिक संपत्ति से ज़्यादा महत्व का होता है। तो धन मैंने दे दिया, धन का अधिकारी मैं हूँ, मुझको ले लीजिए, मेरे शरीर को ले लीजिए। इसी पॉइंट को पकड़ लिया बिंध्यावली ने, तो कहते हैं कि इनको लज्जा नहीं आ रही। उसके मन में इच्छा थी कि हमारे पति को मुक्त कर दिया जाए, पर पति के दोषों को ही बता रही है, गुरु को नहीं। यही चतुर्थाई बुद्धिमती थी वो, तो परम साध्वी थी, पतिव्रता थी, पर पति के हित के लिए भगवान से बोल रही, सब कुछ भगवान का है, देह या धन कुछ भी सब भगवान का है। तो इनको ये कहना चाहिए था कि हे प्रभु, मेरी बात झूठी हो गई, और जो दो पग आपने ना पा वो सब भी तो आपका है। तो वास्तव में ये बात कहना कि मैं दूंगा, मैंने दिया, जो बाकी है वो भी दे दूंगा, मेरी संपत्ति है, ये कहना शोभा की बात नहीं है, ये झूठी बात है। जब सब कुछ भगवान का ही है तो इसको क्यों कहें कि हम देंगे, हम देंगे चाहे हम भोगेंगे, ये विचार अशुभ का है। सारी दुनिया में सब जगह लोग अधिकार किए हैं, इतना जमीन हमारा है और तुम्हारा है, कुछ को अमेरिकन लोगों ने घेर रखा है, ये जमीन हमारा है, कनाडियन कहते हैं ये जमीन हमारा है, सीमा बना दिए, और यहाँ तक कि अगर कहीं जाना हो आना हो तो हमारे हमसे वीसा लो, हम परमिशन देंगे तब आओगे। जब भगवान की दुनिया है सब जगह, लेकिन कौन कहता है कि भगवान का, सब लोग नाम लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बॉम्बे में इतना घर है, सब में ईंट लगा है या इस्पात लगा है, सीमेंट लगा है, ये सब वस्तुएं कहाँ से आई है, सब भगवान की बहिरंगा प्रकृति से आई, सीमेंट हो चाहे इस्पात लोहा हो, सब कुछ भगवान से आया है, हम लोग कुछ भी बना नहीं सकते, सब कुछ धरती से लेते हैं, भगवान का है। तो ये कहना कि हमारा है, उस पर नाम लिख देते हैं, अपना नाम और ये भी लिखते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, इंट्रांस नहीं है, यहाँ प्रवेश वर्जित है, नो एडमिशन। तो भगवान भी आए तो उनके लिए भी मना है, जिनका सब चीज है बनाया हुआ दिया, और मिस्त्री बनाया है, मिस्त्री में भी जो बुद्धि है, जो मेहनत है, शक्ति है, वो भगवान का है, और पैसा भी सब कुछ भगवान का है, वो नोट छापना या हीरा सोना सब कुछ भगवान का। बिंदावली जी स्पष्ट कहते हैं कि कोई कोई वस्तु किसी का नहीं है, सब कुछ भगवान का है। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, नारी होकर के भी ब्रह्मा जी से ज़्यादा महत्व की बात बोली, तब तक ब्रह्मा जी चुपचाप रह गए, उसको बोलने दिए। जब उसने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया तब ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी भी घबरा गए बोलने में, ये कहने लगा कि हे प्रभु, आप ऐसे सुंदर स्वभाव वाले हैं कि संसार में कोई व्यक्ति आपको फल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, आप पर जल चढ़ा दे, आपको अर्पित करे, यहाँ तक कि दूब अंकुर दूब अर्पित करें, तो उसको या तुलसी दल अर्पित करें तो उसको आप वैकुंठ दे देते हैं, वैकुंठ की संपत्ति देते हैं, और इस व्यक्ति ने, बलि महाराज ने तो आपको पूरी दुनिया अर्पित कर दिया, पृथ्वी का सारा वैभव, तीनों जगत का इसने आपके चरणों में अर्पित कर दिया, तो इसको अब बांधना ठीक नहीं है, तो इसको जल्दी से जल्दी खोल दीजिए, ये ठीक नहीं है। तुलसी दल अर्पित करने वाले को, जल अर्पित करने वाले को आप वैकुंठ दे देते हैं, वैकुंठ की संपत्ति देते हैं, और सारी दुनिया की वस्तुएं अर्पण करने वाले को आप बांधे हैं, तो ठीक नहीं। ये विद्यावली बोल रहे थे कि बांधे हैं, ठीक किए हैं, ये गलती इनका विचार है ना, ये सोचते हैं कि दुनिया हमारी है, हमारा शरीर है, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसने सब कुछ अर्पित कर दिया है, तो इसको बांधिए मत, खोलिए तुरंत। तो विंध्यावली की बात और ब्रह्मा जी की बात का तात्पर्य एक ही है, वो भी बेचारी चाहती थी कि हमारे पति को खोल दिया जाए, और ब्रह्मा जी तो चाहते हैं, तो भगवान ने कहा ये ब्रह्मा जी आप घबराइए मत, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, मैं उसका हित करने के लिए धन छीन लिया। ये भगवान का स्वभाव है, श्रीमद् भागवतम में कई बार ये बातें आई है। एक बार एक असुर था, हिरण्याक्ष का पुत्र शकुनी, तो शकुनी का पुत्र असुर था, उस वह एक बार नारद जी से मिला, नारद जी से पूछा, नारद जी आप बताइए तीन देवताओं में जल्दी कौन प्रसन्न होता है, तो श्री नारद जी भगवान का नाम नहीं दिए, कह दिए कि ब्रह्मा जी शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी रंज भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं हमको प्रसन्न करना है, ब्रह्मा और शिव में बताइए कि इन दोनों में मैं किसकी पूजा करूं, तो नारद जी ने कह दिया उसमें भी ज़्यादा आप जल्दी प्रसन्न होते हैं शिव जी, ये और ढर दानी है आशुतोष। तो गया तो पूछा कि कहाँ रहता है वो, तो नारद जी ने कह दिया बद्रिकाश्रम में बोल रहे थे नारद जी, तो बोलता है केदारनाथ में रहते, तो गया केदारनाथ पहुँचा, और वो बहुत जिद्दी था, शिव को प्रकट करना ही है, अगर नहीं प्रकट हुए तो ठीक नहीं होगा, तो जा करके अग्नि जलाया और अपने शरीर का मांस काट काट करके उसमें स्वाहा करने लगा, नमः शिवाय स्वाहा, तलवार से मांस काट कर अपना हवन करता शिव जी को प्रकट करने के लिए, पर सात दिन इस तरह का यज्ञ किया पर भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तब उसने निर्णय किया कि अब अपना पूरा शरीर आग में हवन कर दूंगा, गर्दन काटने के लिए तलवार उठाया अपना, तो शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तो अपनी गर्दन काट करके नमः शिवाय कर दूंगा, तो जब ही वो गर्दन काटने के लिए तैयार हुआ तब ही भगवान शिव हाथ पकड़ ले प्रकट होकर के, बस बस अरे बेटा मैं केवल बिलपत्र चढ़ा देने से प्रसन्न हो जाता हूँ, अपनी जिंदगी क्यों नष्ट कर रहे हैं, ठीक है मांगो मांगो तुमको क्या चाहिए, तो असुर था, असुर का विचार बड़ा गंदा होता है, और देवताओं का विचार भी गंदा ही होता है, तो शिव जी वर मांगने के लिए कहें तो वो वर मांगा, मैं जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वो मर जाए, इतना भयानक वर मांगा, अरे ये मांगता कि जिसके सिर पर हाथ रखूं आबाद हो जाए, फले फूले सब सुखी रहे तो ठीक था, लेकिन वो मान जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रखूँ वो मर जाए, तो भगवान शिव ने कह दिया ठीक। जैसे कोई पिंजरे में फंसे हुए शेर को निकाले तो वो शेर सबसे पहले झपटेगा किस पर, पिंजरा से मुक्त करने वाले पर। तो वह तो राक्षस था, वन पाते ही सबसे पहले मस्तक पर हाथ रखने के लिए चला शिव जी के, और शिव जी भागे, उनकी टांग छूटी, भागने लगे और भाग रहे थे तो पीछे मस्तक करके देख रहे थे कितना दूर है, भाग रहा है छुपने को, भागते गए वो तो पीछा करता गया। और जब कहीं भी शरण नहीं मिला तो अंत में भगवान के धाम में भागे, भगवान के धाम की ओर वैकुंठ की ओर भगवान शिव। तो भगवान ने दूर से ही देखा कि शिव जी बहुत घबराहट के साथ आ रहे हैं, तो वे तुरंत एक ब्रह्मचारी का वेश धारण किए, ब्राह्मण का वेश, और उसी रास्ते में खड़े हो गए जहाँ मृकासुर खदेड़ते हुए शिव जी को जा रहा था। तो भगवान ने पूछा बड़े प्रेम से, मृकासुर के मृकासुर जी आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं, अरे आराम से रहना चाहिए, इतना दौड़ने की क्या जरूरत। तो उसने दौड़ते हुए ही कहा, ऐसी बात है कि ये हमें वर दिया है, इसके मस्तक पर हाथ हुआ करके मैं इसको मारना चाहता हूँ और इसकी पत्नी को लेना चाहता हूँ, गौरी का अपहरण करना चाहता, ये विचार है शिव भक्तों का। तो भगवान ने कहा, आप इसकी बात पर विश्वास करते हो, जब से इसके ससुर ने साप दिया है दक्ष ने, तब से पिशाच हो गया है, ऐसे ही झूठ बोलता चलता है। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपनी उंगली को अपने मस्तक पर रखिए। तो भगवान की मीठी मीठी बातों में फंस गया, अब तुरंत अपने हाथ व उंगली को मस्तक पर रखा और धड़ाम से गिर कर पड़ा। तो इस तरह से भगवान कृष्ण भगवान नारायण बड़े शिव जी के भी आश्रय हैं, शिव जी अपने बातों में फंस गए थे तो भगवान ने उनको उबार दिया। शिव जी के भी गति है, आश्रय है। तो भगवान अपने भक्तों को बहुत पक्का करके संपत्ति देते हैं या सुख देते हैं, जल्दी नहीं देते हैं। वे ब्रह्मा जी शिव जी जैसे नहीं हैं कि कोई 7 दिन में जिद से पा जाए। विकासुर जिद में था कि मैं 7 दिन में शिव को प्रकट करके रहूँगा, नहीं प्रकट होने तो जान मार दूंगा, अपनी जान मारने के लिए तैयार हूँ, अपने शिव जी प्रकट हुए। पर भगवान ऐसे नहीं है, बहुत काल तक भक्त को देखते हैं, पक्का हो जाता है कि अब ये नहीं डिगेगा, तब ये संपत्ति देते हैं चाहे सफलता देते हैं। इसीलिए धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि भगवान कठिन परीक्षा ले करके तब कृपा करते हैं। इस बात पर विश्वास करना चाहिए, ये जरूर कृपा करेंगे लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे प्लान के अनुसार नहीं, वे करेंगे वही काम जिसमें भक्त का हित होगा, उसको पक्का बना लेना। जब वह परम शांति से युक्त हो जाएगा तपस्या करके भक्ति करके, तब पसीजते हैं कृपा करते हैं। और भगवान शिव तो ऐसे कैसे फेर में पड़ गए उस राक्षस के, केवल शरीर काट काट करके हवन किया, मांस काट कर, इसलिए वे प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ऐसे नहीं है, पहले भक्त को तपा करके बिल्कुल देखते हैं, पक्का बना करके, जिसमें शांति आ जाए, समूह दम तप शांति। अब बुरे विचार से मुक्त हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब उस पर कृपा करते हैं। तो पहले भगवान बनाते हैं भक्त को, पक्का बनाते हैं, और दूसरे देवता जैसे तैसे वर दे देते हैं जिसको। दूसरे देवताओं में और भगवान में यही अंतर है। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, कृष्ण का भजन। तो अच्छा है, भगवान देर से कृपा करते हैं, लेकिन ऐसी कृपा करते हैं कि जो जल्दी कृपा करने वालों से बहुत गुना बेहतर होता है। जैसे किसी से आप धन चाहते हैं, अगर आपको देरी से दे और दे दे 1 किलो या 2 किलो सोना, और जल्दी कोई देता है और 10-20 रुपया दे दे तुरंत, तो उससे क्या फायदा है? ठीक है 1 साल के बाद ही दे, लेकिन दे दे 5 किलो सोना तो अच्छा है ना। लेट होने से क्या है? भगवान देर करते हैं, उनके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उनका स्वभाव है, अपने भक्त को पक्का बनाते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री लता।